ना कर दिया होता तो यही कहता कि जब पढ़ा नहीं सकत तो पेटा कैसे करो, तो जब हम पे खर्चा नहीं कर सकत तो ऐसा कहने वाले हैं बच्चे। ये दुर्भाग्य है अपना कि अपन इस पंचम काल में ऐसी संतान के लिए सहन कर रहे हैं। शराब पीने लगेंगे तो अपन ये नहीं कह सकते कि भैया थोड़ा तो नैतिक आचरण रखो, अपने घर की परंपरा का निर्वाह करो, काधरो परंपराओं में सब तोड़ दो। बाह्य आचरण का चरणान योग पालन करने के लिए कह करके अपन को दुर्गति से बचा लेता है, कम से कम अच्छी गति होगी, अच्छे निमित्त मिलेंगे। शांति सागर जी आचार्य महाराज चारित्र प्रति कहा करते थे कि भीरु न का संयम धरा, अरे डरो ने संयम धारण करो। तो लोग कहते थे कि आप संयम की बात करते हैं और भीतर में सम्यक दर्शन है कि नहीं, ये तो आपको पता ही नहीं। कह ले भैया जे तो कोई को नहीं पता, जे तो सिर्फ केवल ज्ञानी अवधि ज्ञानी माया प्यारे ज्ञानी कह सकते, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है इतने अपन चरणानि योग से कह सकते। सो हम तो चरणानि योग की पद्धति से कह रहे कि डरो मत, संयम धारण करो। इस संयम के धारण करने से तुम दुर्गति से बच करके स्वर्ग में जाओगे। सो हम भी ऐसा कहते थे कि मैं भी वहीं पर मिलूंगा, अपन दो ही जने धर्म ध्यान करें उतनी स्वर्ग में। उते पे अपनी विक्रिया से अपन समोचरण में भगवान के दर्शन करने और उनकी दिव्य ध्वनि सुनने चलेंगे, और बहुत निमित्त हैं जिससे कि अपन अपने जीवन का सम्यक दर्शन प्राप्त करके कल्याण कर लेंगे। सम्यक दर्शन के बहुत निमित्त वहां पर है ऐसा कहते थे। इसलिए नहीं कि वहां पर बहुत सुख सुविधा है और बहुत अप्सराएं हैं और अच्छे भौतिक सुख हैं इसलिए स्वर्ग जाना है, ऐसा नहीं। मैं स्वर्ग चारित्र का पालन करके इसलिए जाऊं ताकि वहां पर जो दुर्लभ रत्नत्र है उसको प्राप्त करने के साधन मुझे अधिक मात्रा में मिले और मेरा जीवन मैं सार्थक कर लूं उसे प्राप्त करके। ये दृष्टि है, ऐसी दृष्टि रखने वाले को तो बताइए आप कि उसका व्रत नियम संयम ऐसी श्रद्धा के साथ अगर कर रहा है तो उसका ज्ञान आत्मज्ञान ही कहलाएगा। इस तरह चरणानि योग में जीवों को सदाचार में लगा करके दुर्गति से बचाने का उपाय किया और अच्छी गति में लगा दिया। द्रव्यानि योग में तो जीवा जीव सुतत्ते पुण्या पुण्य च बंध मोक्षं च, द्रव्यानि योग दीपा श्रुतिविद्या लोक मातंते। जीव क्या है अजीव क्या है, अरे शरीर अजीव है और तुम जीव हो, तुम ज्ञान स्वरूपी हो, शरीर तो जड़ है, ऐसा भेद तो जानो। लेकिन शरीर के जन्म मरण में ही अपना जन्म मरण मानते हो, अरे थोड़ा तो ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा द्रव्यान योग अपन को जीव अजीव आदि प्रयोजन भूत सात तत्वों का ज्ञान कराता है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, राग द्वेष जो बंध के कारण है उनको छोड़ो, वीत राग भाव ही मोक्ष के लिए उपयोगी है, ऐसा बंध और मोक्ष तत्व का ज्ञान कराते पुण्य और पाप ये दोनों किस तरह से एक सम्यक दृष्टि पुण्य का अर्जन करता है और एक मिथ्या दृष्टि पुण्य का अर्जन करता है, दोनों में अंतर क्या है, ये सब द्रव्यान योग बताता है, जिसके माध्यम से अपन को वास्तविक अपने वीतरागता का आत्मा का स्वभाव का ज्ञान होता है और अपन पर पदार्थों में आशक्त जो होने की तरफ जा रहे थे उससे बच जाते हैं। अपने स्वभाव को जान करके अपन जो राग द्वेष इत्यादि है उनको मंद कर लेते हैं कि अरे मेरा स्वभाव थोड़ू है राग द्वेष, मेरा स्वभाव तो वीतराग है। इस तरह द्रव्यान योग की पद्धति से आचार्य भगवंतों ने अपने को ज्ञान दे करके और अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए उपाय बताया। भैया किसी भी अनुयोग के माध्यम से अपन ज्ञान प्राप्त करके और अपने जीवन को सार्थक कर सकते। मनो भैया ज्ञान तो वास्तविक वही है जिससे कि विनय आवे, जिससे कि अहंकार मिटे, जिससे कि अज्ञानता दूर हो। ये हमेशा ध्यान में रखें कि चाहे किसी भी अनुयोग का अभ्यास करें लेकिन अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए, कषायों को मंद करने के लिए, अज्ञानता का नाश करने के लिए, दूसरे को अज्ञानी साबित कर दे, दूसरे से लड़वे झगड़वे कि हम जाना थे ज्यादा तुमसे, तुम का जाना, ऐसा करने के लिए ज्ञान प्राप्त तो परिवार किया अनादिकाल से प्राप्त किया है लेकिन उससे अपना जीवन सार्थक नहीं हुआ। अपन ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिससे अपने भीतर विनय प्रकट होवे। विश्वामित्र और वशिष्ठ इन दोनों के बारे में एक घटना आती है। ऋषि थे, विश्वामित्र को लोग ब्रह्मर्षि कहते थे, लेकिन वशिष्ठ को कोई ब्रह्मर्षि नहीं कहता था। इस बात की वशिष्ठ को बड़ी चिंता रहती थी कि जब तक विश्वामित्र मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे तब तक कोई नहीं कहेगा। सो इनकी हमेशा विश्वामित्र से टसल चलती रहती थी, झगड़ा। यहां तक कि उनके पुत्रों के विनाश में भी कारण बने। अरुंधति उनकी जीवन साथी का नाम था विश्वामित्र की। एक दिन घर में नमक नहीं था तो विश्वामित्र से कहा कि नमक नहीं है घर में, तो क्या कहा उन्होंने, जाओ वशिष्ठ के यहां से नमक ले आओ। अरुंधति बोली कि वही वशिष्ठ जिनने कि हमारे पुत्रों के नष्ट करने में निमित्त बने जो, और उन्हीं से तुम कहते हो कि नमक लेकर के आओ। तब विश्वामित्र कहते हैं कि बहुत प्रेम है मेरा वशिष्ठ से, इसी वजह से तुम्हें कहता हूं जाने के लिए। बोले जब इतना ही ज्यादा प्रेम है तो उनको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते, सारा झगड़ा तो इसी बात का। तो कहते कि उसी प्रेम की वजह से तो ब्रह्मर्षि नहीं कहता हूं मैं। अब बताओ, बाहर खड़े हुए उस दिन तय करने आए थे कि विश्वामित्र रहेंगे या कि मैं रहूंगा, तलवार लेकर के बाहर खड़े दरवाजे पर वशिष्ठ। जैसे ही ये बात सुनी कि विश्वामित्र तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो उनसे बहुत प्रेम रखता हूं, पानी पानी हो गए, तलवार एक तरफ फेंक दी और चरणों में लोट गए विश्वामित्र के। तो जैसे ही उनके चरणों में झुके, विश्वामित्र ने वशिष्ठ को उठाकर गले से लगा और कहा कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, तुम आज से सचमुच ब्रह्मर्षि हो गए। तुम्हारे भीतर ज्ञान के साथ अब विनय आ गई, तुम्हारा ज्ञान सार्थक हो गया। ज्ञान तो विनय के साथ ही शोभा देता है, अकल के साथ शोभा नहीं देता ज्ञान। ज्ञानवान होवे लेकिन अपनी ठसक में रहवे, जैसे कपड़ा अच्छे उजरे पहरे हो, कीमती पहरे हो, उतने सो बिल्कुल कुसन छिप नहीं जा रहे कपड़ा, छिपित सोने वाले कहते हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही करते हैं कि बिल्कुल ऐसे कलप करे हुए चले जा रहे हैं, बैठे तो समार कहें कि खराब नहीं हो जाए, नहीं चीटी न मर जाए ये ध्यान नहीं उनको, नहीं नवा कपड़ा खराब नहीं हो जाए, हम बिल्कुल दुआ करे कह के आए। इस तरह अपने धन पैसे ज्ञान इत्यादि सबका अपने भीतर अगर अहंकार है तो वो अपने ज्ञान को सार्थक नहीं होने देता। अपन कोशिश करें कि भैया ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि अपने भीतर की कषायें मंद हो, अज्ञानता घटे और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न हो। इस तरह अपन ने बहुत सारी आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करी। आपके यहां तो 21 तारीख से भैया जी ज्ञान देने के लिए उपाय भी कर रहे हैं, तो अपन को उसमें सहयोग करना चाहिए। सहयोग क्या, उनके माध्यम से अपन को अपने जीवन में थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करने की ललक उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इसके लिए उपाय कर रहे हैं तो सब लोग उसमें शामिल होकर के और उनका सहयोग करें और साथ में अपने जीवन का भी उत्थान करें, ये सी हमारी भावना है। और रही बात, भैया जी कह रहे थे कि निःशुल्क किताबें दे हैं, तो हम कह रहे भैया जी से, भैया बिल्कुल नहीं दीजिए, फोकट में किताब है, पैसा ले लियो फिर दीजिए, जो भी सामान दो ना अव्यवस्था होगी सब ले लेंगे, घर वाले जाके रख लेंगे, पर मैं अपने कोई को नहीं है, बदलो ये मामला। अब तो सब चीजें व्यवस्थित करने के लिए इस तरह करना पड़ेगा, लोलुपता कम करने के लिए अपने कुछ तो त्याग करो। अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उस ज्ञान के प्राप्त करने के लिए कुछ तो गलत हो, कुछ तो जिसको हम त्याग करें अपने जीवन में, जो अपन ने जोड़ जोड़ करके रखा है, जिसको आसक्ति पूर्वक, तो भैया इस तरह अपन अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त करें। बोलिए आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग जग विषय में रच पचक गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो,
अवधुन शाका सन्नाटा मन में मन चारी चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तपशैली नदी तट पर तरुतन वर्षा की झड़िया में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला भरती है मानो भरती फूल झड़िया,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़ी खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सामने क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पचपंथी गुरुवर प्रणाम,
उदक चंदन तंबुल पुष्प कश्चर सुदीप सुधूप फलार्धक,
रवलमंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे निराजमहम।
ओम रीम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, मुनि श्री भूमि सागर जी महाराज चरणों में अरविंद प्रणति
स्वाहा। नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी है,
चंद्र विज्ञान वेखो मंदिर विधि भान वेखो स्वपर पिछान वेखो प्रमाणी है,
अनुभव ताए वे को दीवो के जताए वे को कामन सताए वे को भव्य उरे आनी है,
जहां कहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिम्मेवारी है,
गवन के जानते सूर्य लोकालो सुवानी मस्तक नमो सदा देत होंगे, हे दिनवाणी भारती तोरे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पाव सुख सैन। खिड़की में से क्या फेंक देती हैं अपने पॉकेट में से निकाल के, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, उनने टालने की कोशिश करी। अच्छा काम मैं कर रहा हूं, लोगों को बताऊं क्यों, बताने के लिए थोड़ी है, एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ी है, अपन तो थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बुरे काम का एडवर्टाइजमेंट नहीं, वो तो छुप करके करेंगे, पता नहीं लगना चाहिए दूसरे को। अब बड़ी मुश्किल के बाद अम्मा जी राजी हुई बताने के लिए, तो उन्होंने कहा बेटे मैंने अपने पिछवाड़े कुछ थोड़े से सुगंधित फूल लगाए थे, उनमें बहुत सारे बीज आ गए, मैंने कहा इन बीजों का क्या करूं, मैं फिर से वहीं पर थोड़े से बीज डाल करके और फूल उगाती हूं लेकिन ढेर सारे बीज बचे हुए हैं, अब इनका क्या करूं। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना जब मैं यहां से वहां कहीं ट्रेन में यात्रा करूं तो अपने साथ बीज रख लूं और जगह जगह मैं उन बीजों को डाल दूं तो मेरे पूरे देश के देशवासियों को सुगंध प्राप्त होगी उन फूलों के द्वारा। क्या विचार है? अपने घर के पिछवाड़े में तो मैंने फूल लगाई रखे हैं सुगंधित, अपने आत्मकल्याण के लिए तो मैं अपने जीवन में जो करना चाहिए वो तो कर ही रहा हूं, मेरे निमित्त से अगर कोई और आत्मकल्याण करना चाहे तो मैं उसमें भी निमित्त बन जाऊं। ये विचार श्रेष्ठ विचार है, लेकिन ज्ञान के उपयोग को अपन थोड़ा सा इस दिशा में भी लगाएं तो सार्थक होगा। आचार्य भगवंतों ने तो ज्ञान प्राप्ति के 5 उपाय बताए हैं, स्वाध्याय के 5 भेद ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के 5 उपाय हैं। वाचना प्रश्नानुपेक्षा मनाय धर्मोपदेशा, ये 5 भेद हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो इतना नहीं लिखा सिर्फ कि पढ़ लेने का नाम वाचना है, गुरु के मुख से पढ़े लिखे हो तब भी गुरु के मुख से ग्रंथ का स्वाध्याय सुनना ये वाचना, वचन का जिसको अपन कहते थे कि गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, कमती पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, ग्रंथों में विद्वानों के द्वारा, आचारी भगवंतों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जो भगवान की वाणी लिखी है उत्तई ही बाँचो, बस अपनी तरफ से उसमें नमक मिर्ची न डालो, कोई आवश्यकता नहीं। नहीं पढ़े लिखे हो मत उसकी व्याख्या करो, जैसा कहा गया है ज्यों का त्यों हमें सुना तो दियो। सो 4 जने बैठ गए और एक ने बांच दिया, सबने सुन लिया। वाचना इस तरह सुन करके भी अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता। आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने जितने ग्रंथ पढ़े हैं उससे अधिक आचारी महाराज से सुन करके ज्ञान प्राप्त किया है। बताइए, सुन सुन करके सिर्फ कहां लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में, ये तो बाद में जानने में आया, लेकिन पहले गुरु के मुख से सुन करके जब समय सारजी उन्होंने मुनि दीक्षा के उपरांत अवलोकन कराया तो पूरा जब समय सारजी हो गया तब हमको तो बहुत मुश्किल लगता था कि भैया बड़ा कठिन है, अपन नहीं पढ़ते। जब पूरा आचार्य महाराज के मुख से पढ़ा दिया गया तब ग्रंथ के समापन पर हमने आचार्य श्री से निवेदन किया कि हम तो बहुत डरते थे, हवा समझते थे समय सार जी को, लेकिन तो बड़े सरलता से और आपने हमें इसका ज्ञान भी करवा दिया। बोले क्या समझ में आया, हमने कही वो तो कुछ समझ में आया तो आया, मगर एक ही बात समझ में आई, इतने ग्रंथ पढ़े हमने और समय सार जी पढ़ लिया, एक ही बात समझ में आई कि राग द्वेष मोह न करो, अपने मिथ्यात्व को राग द्वेष को घटाओ, उसमें निमित्त है ये सब शास्त्र, चाहे वाचना के रूप में पढ़ो चाहे स्वयं स्वाध्याय करो, वो हमारे राग द्वेष को और मोह को जो अनादिकालीन मिथ्यात्व अज्ञान पड़ा है उसको दूर करने में निमित्त है। और ऐसे ज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में शुद्ध ज्ञान को आचार्य भगवंतों ने हमें दिया। अंग प्रविष्ट में तो आचारांग आदि 12 अंग प्ररूपित किए गए, जो कि आज पंचम काल में अपन इतना पुण्य लेके नहीं आए कि अपन को जिनके स्वाध्याय का, जिनके दर्शन वंदन का भी सौभाग्य मिल सके। सो द्वादशांग का सौभाग्यपन को सिर्फ श्रद्धा से अपन स्वीकार कर लेते हैं, इतना ही है अपना पुण्य, लेकिन उसी द्वादशांग के आधार पर अल्प बुद्धि, अल्पबल और अल्प आयु शिष्यों के अनुग्रह के लिए गणधर भगवान के द्वारा और परंपरा से आचार्यों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अंग बाह्य आज भी उपलब्ध हैं, और अपने पास अंग बाह्य के रूप में शुद्ध ज्ञान आज भी उपलब्ध है। उस शुद्ध ज्ञान की वाचना करना, उसको पढ़ना कि मेरे उपकार के लिए ये लिखे गए हैं, सिर्फ इस मुख से उनका उच्चारण कर लूं, आंखों से उन शब्दों को देख लूं, कानों से सुन लूं, इतना ही सार्थक कि नहीं आता समझ में कोई बात नहीं। अगर पढ़ना भी नहीं आता, निरक्षर है, तो कम से कम सुन तो सकते हैं। चार बातें दिन भर में मैं रेडियो सुनने की तो मेरी आकांक्षा रहती है, खबरें सुनने की आकांक्षा रहती है, लेकिन मैं चार बातें अपने कल्याण की भी दिन भर में इन कानों से सुनूं, ये आकांक्षा कहां कितनी अपने मन में है, क्या ज्ञान है अपने पास, अपने पास के ज्ञान का अपन क्या उपयोग करते हैं कि हम अच्छे से अच्छी चीजें देख लें, टेलीविजन देख लें जिसमें कि दूर दराज की कितनी बातें दिखाई जाती हैं, कभी अपने मन में उन आंखों के द्वारा जिसमें कि अपन को क्षयोपशम आत्मा प्राप्त हुआ, वो तो मात्र खिड़की है, उस आत्मा के द्वारा, उस क्षयोपशम के द्वारा टेलीविजन देखने के लिए क्षयोपशम मिला था, या कि अपने आत्म कल्याण के लिए जो शास्त्र लिखे थे उनका अवलोकन करने के लिए, बताइए। अपन देखें कि हम अपने जो ज्ञान प्राप्त है और जो क्षयोपशम प्राप्त है उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या अपन वाचना कर पा रहे हैं, जो अपने लिए सिर्फ उपकार के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा उसे हम परायण भी नहीं कर पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे। प्रश्ना ये भी स्वाध्याय का एक भेद है, ज्ञान प्राप्ति का एक उपाय है, नहीं पढ़ पाते हैं तब भी चुपचाप आकर के दूसरा कोई, पहले हम लोग करते थे आचार्य श्री ऐसे बोलते बोलते नहीं थे, चुपचाप अपने काम में लगे रहते थे, उनको बुलवाना पड़ता था, अभी भी। सो पंडित पन्नालाल जी थे, सो उनको आगे आगे कर देते थे कि आप कछु चर्चा करो महाराज से, हम और सुन लें। सो बैठ जाते थे घेर करके और पंडित जी से कहते थे कि आप करो, तो पंडित जी बहुत सारी चर्चा करते जिसमें एक आध सेंटेंस आचार्य श्री बोलते उतने ही सुनने के लिए बैठे हुए, पता नहीं कौन सी ज्ञान की बात निकल जाए मुख से और मेरे कल्याण में वो निमित्त बन जाए। भैया बात छोटी बड़ी नहीं होती, बात तो कीमती तब होती है जब वो छोटी सी बात भी अपने आत्म कल्याण में निमित्त बन जाए। मैं गढ़ा कोटा में 1986 में चतुर्मास कर रहा था, बच्चों के प्रति एक सहज प्रेम का भाव तो था ही, उनको अच्छे से अच्छा संस्कार अपन दे सकें क्या करें, तो ये सोचा कि भाई ऐसा करें कि छोटी छोटी किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए अपने पास रहें, जो भी बच्चे आते हैं मांगते हैं उनको ये किताब, तो कुछ तो पढ़ेंगे उसमें से। हमारी दादी अम्मा हमसे किताबों की अलमारी साफ करवाती थी अकेली 10 पैसे में, 10 बहुत होते, तो अपने को जब पैसे चाहिए पड़ते थे कि हमें 10 पैसे दे दो तो हमारी किताबों की अलमारी साफ करो, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक। तो सब किताबें निकाल करके जो उनके वेस्टन फट गए हैं उनको ठीक करके वो फिर उसी अलमारी में जमा देते थे, उस बीच में छोटी छोटी गुटके भी रखे हुए रहते थे, जो गुटका पाउच वाले गुटका नहीं, विपरीत के गुटका, छोटी छोटी किताबें तो वो रखी रहती थी, वो देख करके बचपन में बड़ा क्रेज था उनको कि छोटी किताब है अपन ले लें। मनो पूछ लो दादी से कि दादी ये वाली किताब हम ले लें। हाँ भैया ले लो। उनका उद्देश्य तो बाद में उनने बताया कि मेरा तुमसे 10 पैसे दे करके अलमारी शास्त्र की ठीक करवाने का उद्देश्य ये था कि पता नहीं कौन सी किताब तुम्हें अच्छी लग जाए और तुम अपने बस्ता में धर लो और पढ़ के उखो कुछ अपना ज्ञान प्राप्त कर लो। पता नहीं तुम्हारे द्वारा वो खोले जाने पर कोई चीज प्रभुपद पावन की विनती ऐसे ही सीखी। भाई अपन ज्ञान के लिए क्या कर रहे हैं, नई पीढ़ी के लिए ना अपने लिए उपाय कर रहे हैं। अपन अपने बच्चों से नहीं पूछते हैं कि बताओ इंद्री कितनी होती, बताओ प्राण कितने होते, सत्व कितने होते, द्रव्य कितने होते, नहीं तुमने कितने नंबर लिया है, कितनों पढ़ लो, कहां पढ़ रहे हो, ये बारी तो बातें पूछेंगी, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ तुम्हें तत्व का ज्ञान है कि नहीं अपने बच्चों से अपन ये नहीं पूछते। अपन को खुद नहीं मालूम, पैर दबाते दबाते मां दबवाने के लिए 10 पैसे में राजी हो जाता था मैं और पैर दबाता था। उस बीच में पैर दबाते दबाते मां पूछती थी कि तुम्हें मालूम तुम्हारी कितनी इंद्रियां हैं, तुम्हें पैर पांव दबाने हो तो दबाओ, ने हमें मालूम है ने कछु, ऐसा कह देते थे। तो कहते नहीं हम बताते तुम्हें 5 इंद्रियां हैं, देखो तुम्हारी आंख है, कान है, यही तो इंद्रियां हैं, सो ऐसी 5 होती हैं। अच्छा थोड़ी देर दबाया तुम्हें मालूम कितने प्राण होते, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं दबाना, पाओ नहीं चाहिए 10 पैसे, तुम जो दुनिया भर की बातें प्राण बताने लगे, दबाओ हो तो अच्छे से दबवाओ, ऐसा कह देते उनको। नहीं हम बताते हैं 10 प्राण, देखो अपन ने 5 इंद्रियां सीखी, मन वचन काय 3 योग है, आयु और श्वासोच्छ्वास है, यही तो 10 प्राण है, बस ये लो 10 पैसा भगो। लेकिन वो 10 प्राण जिंदगी भर आपके अंदर स्पष्ट हो गए खेल खेल में, पैर दबाते दबाते क्या घर के काम करते करते अपन स्वयं इस तरह आपस में एक दूसरे से तत्व चर्चा नहीं कर सकते, या वहां की बातें तो करेंगे, तुमने उनकी सुनी है, कौन के होगा या जहार, अरे उनके तो जल्दी होगा, उनको तो 10-15 दिन को होगा, उनके नहीं भाई, बताओ महाराज को सुनी है, सही है वो, अच्छा नहीं है, अब लियो दुनिया भर की बातें। लेकिन उसने एक ने भी ये नहीं कहा कि 7 तत्व कौनसे हैं, आप तुमने पढ़े कि नहीं पढ़े, जरा रिवाइज कर ले, 6 द्रव्य कौन से हैं, ये नहीं करेंगे चर्चा, दुनिया भर की और चर्चा करेंगे। लेकिन प्रयोजन भूत तत्व जानने के लिए जो क्षयोपशम मिला था उस क्षयोपशम का सदुपयोग नहीं करेंगे। अपन प्रश्न भी करें तो इस तरह से स्वाध्याय हो सकता है आपस में, हमें नहीं मालूम तो दूसरे से मालूम पड़ जाएगा, एक व्यक्ति प्रश्न करता है और 100 लोग उसका जवाब सुन लेते हैं, ये प्रश्ना नाम का स्वाध्याय अपन दोपहर में करते हैं, उससे भी अपना ज्ञान बढ़ता है कि नहीं, उससे भी अपन को हे और उपादेय का ज्ञान होता है। अनुपेक्षा जो अपन ने समझा सीखा है संसार शरीर और भोगों के बारे में, उसका बार बार चिंतन करना और उसे हमेशा विचार में लिए रहना, खाते पीते भी विचार आ जावे कि क्षण भंगुर है सब, संबंध बनाते ही समझ में आ जाए कि देखो हम ज्यादा अपेक्षा नहीं रखें, सब तो संसार के जहां जहां हम शरण मानते हैं वो सब शरण नहीं है, शरण तो 4 ही है, अनंत सिद्ध भगवान पंच परमेश्वरी ही शरण है, भगवान के द्वारा कहा गया वीतराग धर्म ही शरण है, 4 ही शरण है, ऐसा ध्यान आता अपन को रोजमर्रा के काम करते समय। तब अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय जो अपने आत्म कल्याण में सहायक हो सकता है वो भी अपन कर सकते। आमनाय आमनाय तो खत्म ही हो गया, पहले लोग जब संग्रह याद कर रहे हैं, रत्नकण शाब्दाचार याद कर रहे हैं, सकल ये की विनती याद कर रहे हैं, भक्तांबर याद है, तत्वार सूत्र याद है, रट लो काम आएगा, कब काम आएगा? आए समय में जबकि पढ़ने के लिए ताकत नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, कैसेट चलाने के लिए लाइट नहीं है, तब क्या करोगे? बेड पर पड़े पड़े कितनी देर माला फेरोगे? और अगर कंठस्थ है विद्या, आपने श्लोकों को याद,
तीर्थंकर हमारा कल्याण करते हो, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर के काल में निमित्त पाकर के हम अपने उपादान को जागृत करके अपना स्वयं कल्याण करें तो कर सकते हैं। ऐसे ही जब चौथा काल आएगा तब मैं अपना कल्याण करूंगा। ये तो पंचम काल है, इसमें तो वैसे ही लिखा हुआ है कि कल्याण हो ही नहीं सकता, कोई मोक्ष को प्राप्त ही नहीं होगा। काय को विकार में तपस्या पस्या करो, महाराज जी विकार में 12 व्रतों की चर्चा कर रहे, होने जाने का चूहे ही नहीं है। ये भाई ऐसा नहीं है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि हमने इतने जितने खोटे कर्म बांधे हैं उनको एक जीवन में अपार तपस्या करने पर भी सहसा काटा नहीं जा सकता। हमें कई कई बार प्रयत्न करके अपने उन असाता कर्मों को और समस्त कर्मों से मुक्त होने के लिए उपाय करना पड़ेगा। सो अपन इस जीवन में भी भले ही मोक्ष साक्षात प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन परंपरा से निर्वाण प्राप्त करने के जो उपाय हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उन सबको जैसी अपनी शक्ति है उतना तो स्वीकार करें। सुशावक के लिए सच्ची श्रद्धा पूर्वक 5 अणुव्रतों को धारण करने के लिए सामान्य रूप से उपदेश दिया कि कछु न कर पाओ तो इतनो तो करो। पाक्षिक श्रावक तो कम से कम बन करके अपना जीवन व्यतीत करो, और हो सके तो अपने जीवन में प्रतिमा इत्यादि के व्रत ग्रहण करके और नैष्ठिक श्रावक की पदवी पाओ। सो पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक श्रावक धारण करता है अपने आध्यात्मिक विकास के लिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया करता है। दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रतों के साथ 7 सील व्रतों की चर्चा भी करी गई। उन 7 सील व्रतों में से अपन 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत के बारे में समझ रहे हैं। 3 गुण व्रत के बारे में तो अपन विचार कर चुके हैं, 4 शिक्षा व्रतों में जो देशावकाशिक व्रत है उसकी चर्चा भी अपन कर चुके हैं। अपन सामायिक कैसे करें, सामायिक से अपने जीवन में क्या लाभ है, इस पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में जो समता भाव जितना जिसके भीतर है वो उतना ही सामायिक कर रहा है। 3 संध्या कालों में सामायिक करने का उद्देश्य भी यही है कि मैं समस्त 5 पापों से थोड़ी देर के लिए ही सही घर गृहस्थी में मुक्त होकर के पंच परमेश्वरी का स्मरण करूं और विचार करूं, ऐसा विचार जिससे कि मेरे जीवन में समता आवे। मैं परिणामों को जो मेरे कर्म के उदय में मुझे प्राप्त होते हैं उनको स्वीकार नहीं कर पाता हूं। जब पुण्य का उदय आता है और मेरे काम आसान हो जाते हैं तब मैं उन सब कार्यों को करने का अहंकार कर लेता हूं और सारी दुनिया से अपेक्षा रखता हूं कि मैंने ये काम किया है सो इस काम का श्रेय सारे लोग मिलकर के मुझे दें। देखो कैसा अपना विचार मन में उत्पन्न होता है। अरे पुण्य के उदय से काम आसान हुए हैं, मेरे मन के अनुकूल हुए हैं, इनमें मुझे किसी से सम्मान पाने की क्या आवश्यकता है और अहंकार करने की क्या आवश्यकता है? वो तो वस्तु का जैसा परिणमन था वैसा हुआ है, सुख रूप परिणमन था सो सुख रूप हुआ है, ऐसा विचार करके और मैं अपने अहंकार को आसानी से जीत सकता हूं। अपन तो एक कदम उससे आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अपना सम्मान होवे चाहे न होवे, अपन को पूछे चाहे न पूछे, हमारे सामने दूसरे का सम्मान हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपनो कछु नहीं गाओ, ने अपनो अपमान भाव ने कछु भाव, मगर और दूसरे का सम्मान भी हमें तकलीफदायक हो जाता है। हमारे कार्यों के लिए हमें श्रेय मिले, दूसरे के कार्यों को दूसरे को श्रेय क्यों मिले? ऐसा मिथ्या विचार अपने भीतर आ जाता है। अपन परिणामों को सहर्ष स्वीकार नहीं कर पाते हैं और कर्ता भाव से अहंकार कर लेते हैं, और जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है, दुख आता है, तब फिर ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, मेरा तो उसमें कोई दोष नहीं है। मैं उस दुख से, उस प्रतिकूलता के लिए स्वयं को जिम्मेदार न मानने की जिद करता हूं और प्रायश्चित या कि दंड स्वीकार करने से बचना चाहता हूं। मेरे अपराधों के लिए सारा संसार एक तो देखे ही नहीं, अनदेखा करे, और देख भी लिया है तो क्षमा करे, और मैं अपने अपराधों के प्रति बचने के लिए, ताकि अपराध बोध ना हो, कंसोलेशन अपने लिए सांत्वना देता हूं, हमने थोड़ी करो, उनने ऐसो कर दो सो होगा, अब लियो। स्वीकार नहीं कर पाते अपन, ना सुख की अवस्था स्वीकार कर पाते, ना दुख की। अगर सुख की अवस्था स्वीकार कर लें तो भी कोई एक्साइट होने की बात नहीं है, और दुख की अवस्था स्वीकार कर लें अगर तो कोई डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु का परिणमन, कर्म का उदय, सुख रूप और दुख रूप इस संसार में होता ही रहता है। मैं ऐसा क्या करूं कि सुख दुख देने वाले कर्मों को ही काट दूं और अपनी परम वीतराग विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लूं? सो इन दोनों में हर्ष विषाद न करूं तो मेरे कर्म का बंध नहीं होगा, इनमें समता रख करके मैं इन दोनों को जीत सकता हूं। ऐसा विचार सामायिक करते समय अपने मन में आना चाहिए। सवेरे की सामायिक में बैठे हैं तो रात भर में जो खोटे विचार, अच्छे विचार आए हैं, उन सब का एनालिसिस करते हैं कि देखो मेरे भीतर ऐसे अशुभ परिणाम आए, यह मेरे पाप कर्म के उदय से आए, और ये शुभ परिणाम आए सो मेरे लिए इनका श्रेय नहीं लेना चाहिए, ये तो पुण्य के उदय से आए हैं। ऐसा समता भाव सुबह की सामायिक में रखता और संजा को सामायिक करता, सो दिन भर का विचार करता कि कौन कौन को हमने गारी दी, किस किस से हमने अपशब्द कहे, किस किस का बुरा विचार किया, शरीर से कितने जीवों की हिंसा करी, मन वचन काय से मेरी जो प्रक्रिया हुई है वो समता पूर्वक बहुत कम हुई है, राग द्वेष पूर्वक ही अधिक हुई है। मैं दिन भर अपने पराये के खेल में ही उलझा रहा, बच्चे तो अपने खिलौने खेलने में उलझे रहते हैं और मैं बड़ा होकर के भी इसी खेल में उलझा हूं कि जी अपना जी पराया, जी तो राग द्वेष का ही खेल है। मैं थोड़ी देर ऐसा भी निकालूं समय जिसमें कि अपने पराये के भेद को मिटा करके मैं समता भाव रख सकूं, जो हर्ष विषाद के कारण हैं, सुख और दुख उन सब में, बंधु और शत्रु में, दोनों में मैं समता भाव रख सकूं। आज मेरे से अपशब्द कहने वाले के प्रति भी मैंने क्षमा भाव धारण कर लिया, ये मेरी उपलब्धि हो गई। ऐसा विचार अपने मन में आना चाहिए। आता तो ये है कि आज दिन भर में उनने चार बातें ऐसी कड़ी कह ली, अब तो प्लान करो अपन अपन भी चार कहो उनसे, चार नहीं चालीस कहो, जब तो बराबर हुई है हिसाब। सो भैया जो ही हिसाब बराबर करते रहे उस संसार को हिसाब को बराबर नहीं होने, संसार ही बढ़ता रहेगा। उस संसार का हिसाब अगर बराबर करना है, संसार से पार होना है, तो संसार के सुख दुख में हर्ष विषाद न करें तो ही अपन इस संसार से जीत सकते हैं, वरना तो कीचड़ में पत्थर फेंको तो अपने ही कपड़े गंदे होंगे और कुछ नहीं। विचार करो, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि ये तो कीचड़ है मैं तो इसमें पत्थर फेंकूं तो क्या होगा, जो आपने वस्त्र पहन रखे हैं उन पर उछल करके कीचड़ आने वाली हो और आपके ही वस्त्र गंदे होंगे। मैं दूसरे के बारे में अशुभ विचार करूं, भले ही दूसरा करता हो लेकिन मैं भी अशुभ विचार करूं तो क्या होगा, मेरे परिणाम ही खराब होंगे। ऐसा विचार करके और समता भाव रखता है, परिणामों को रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार है मुझे हर्ष मिला तो, और विषाद है अगर तो, सुख और दुख दोनों की अवस्थाओं में इन हर्ष विषाद की स्थिति में मैं समता का अभ्यास करूंगा। और दूसरे नंबर पर निरंतर विचार करता रहता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है। देखो आज दिन भर में उनके गमी हो गई और उनके यहां पर देखो पुत्रोत्पन्न हो गया, वहां पर उस घर में कैसे बाजे बज रहे उत्सव हो रहा और यहां पर सन्नाटा खिंचा हुआ है, इतने मरण के बाद दुखी हैं सब लोग, उनका क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं छोड़ करके चला गया, अरे इसका क्या होगा। भैया हम संसार के कर्ता थोड़ू हैं, उसके अपने पुण्य पाप भी हैं, वो ही होगा जो उसके पुण्य पाप में है, जो उसने कर्म किए हैं वो होगा, जो किए थे सो उसका फल मिला, ऐसा विचार नहीं आता। बल्कि जब सुख का अवसर जन्म का अवसर आता है तो हर्षित होते हैं, मरण का अवसर आता है तो दुखी होते हैं। लेकिन ना आत्मा का जन्म होता ना मरण होता है, ये शरीर में प्राणों का संयोग हुआ उसका नाम जन्म, और प्राणों का वियोग हो जाएगा सो मरण। इस प्राणों के संयोग वियोग में अपन हर्ष विषाद कर लेते हैं, ना जन्म को स्वीकार कर पाते हैं ना मरण को, जबकि ये सच्चाई है संसार की कि यहां संसार में जन्म मरण और बुढ़ापे के दुख के अलावा क्या पाया अपन ने, थोड़े से भौतिक सुख सोन के पीछे भी दुख ही लगा हुआ है। ऐसे अपन संसार की सच्चाई को स्वीकार कर सकें तब अपन अपने जीवन में वास्तव में सामायिक करी है ऐसा कह सकें, वरना तो अकेली माला फेर ली अपन ने और थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए कि पंच परमेश्वरी के स्मरण के साथ साथ मैं ये भी विचार करूं कि अब धीरे धीरे मेरे परिणामों में जन्म और मरण इन सब की सच्चाई स्पष्ट होने लगी है। एक चित्रकार था बहुत प्रसिद्ध, उसको एक बार जब वो एक तो अपने चित्र बनाने में लगा रहता था, सो शहर में कभी जाता नहीं था, एक बार वो शहर में घूमने के लिए गया, उसने देखा कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ टूट गए हैं, गायब हैं, बड़ा दुखी हुआ, हाथ भी टूट जाते हैं कैसे करता होगा काम। थोड़े आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति के दोनों पैर गायब, अरे इसके तो दोनों पैर नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी की आंख नहीं है, अरे संसार में तो किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, मेरे भी हाथ टूट सकते हैं, मेरे भी पैर टूट सकते हैं, मेरी भी आंख फूट सकती है। ऐसा विचार करके उसने अपने चित्रकारी के काम से विड्रॉ कर लिया। संसार की सच्चाई मालूम पड़ने पर हम अपने सम्यक पुरुषार्थ से वंचित होकर हाथ पे हाथ रख करके बैठ भी सकते हैं, और संसार की सच्चाई मालूम पड़ने पर उस सच्चाई को जान करके अपने कल्याण के लिए जो वास्तव में कार्य है पुरुषार्थ है वो भी कर सकते हैं, जिसको सम्यक पुरुषार्थ कहें। सो उस चित्रकार ने चित्र बनाना छोड़ दिया। जब कोई पूछता कि क्यों नहीं बनाते, कह ले मेरे हाथ किसी भी समय टूट सकते हैं, पैर भी टूट सकते, आंख भी फूट सकती है। सब जने बहुत समझाते कि अबे कौन तुम्हारी आंखें फूट गई, अबे तो तुम्हारे दोनों हाथ भी साबुत हैं, अबे पैर भी साबुत हैं, तुम तो करो बनाओ चित्र। वो कहता है कि नहीं, किसी भी क्षण हो सकता है। हार गया वो अपने जीवन से, निराश हो गया और बैठ गया, नहीं बनाता चित्र। उसके गुरु जी को मालूम पड़ा, गुरु जी आए। गुरु जी ने अनजान बनते हुए पूछा कि भाई चित्र क्यों नहीं बनाते। उसने कहा कि गुरुजी ऐसा है कि मैंने देखा कि हाथ भी टूट सकते हैं, पैर भी गायब हो सकते हैं, दोनों आंखों से रोशनी भी जा सकती है। गुरुजी कह रहे हाँ ये सब सही है। अरे अब वो शिष्य कहता है कि आप हो गुरुजी पहले व्यक्ति, हम जिससे भी हमने कहा उसने कहा ऐसा थोड़ी होता सबके साथ में, आपने भर कहा कि यहां हो सकता है। आपकी आंख भी जा सकती है रोशनी, आपके पैर भी जा सकते हैं, आपके हाथ भी, करना क्या है। ये तो ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो इसी विषाद में घिरा रहा कि किसी भी क्षण घटना घट सकती है, लेकिन जब तक नहीं घटी घटी जब तक मुझे करना क्या है। क्या इसी चिंता में बैठ करके अपना जीवन व्यतीत करना है, या उस चिंता से मुक्त होने के लिए उपाय करना है। जन्म मरण की पीड़ा मुझे हो ही ना, मुझे बार बार जन्म मरण ना करना पड़े, ऐसा सच्चा उपाय जन्म मरण से पार होने का करना है, या जन्म मरण की पीड़ा यहां पर है सो विड्रॉ करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है भयभीत होकर। विभेति मृत्योर् न ततोस्ति मोक्ष। कोई व्यक्ति मृत्यु के भय से भयभीत भी हो जावे तो मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु के भय से बस भयभीत होने पर नहीं बचा जा सकता, मृत्यु को जीतने के लिए हमें अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए तपस्या अंगीकार करनी पड़ेगी, अत्यंत श्रद्धा के साथ, सम्यक दर्शन के साथ। उसके गुरुजी ने कहा कि हां तुम्हारी किसी भी क्षण आंख चली जाएगी रोशनी, अभी तो दोनों साबुत हैं, किसी भी क्षण हाथ नाकाम हो जाएंगे, पैर से चलना बंद हो जाएगा। समझो इस चीज को और बना लो चित्र, बनाना हो तो बढ़िया से कोई, पता नहीं कब तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाए, इससे पहले कि तुम्हारी आंख की रोशनी जाए तुम चित्र बना लो। उसने कहा अरे वाह ये बात तो सही है, और फिर उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया। अकेले मृत्यु के भय से भयभीत होकर के जीवन से निराश नहीं हुआ जा सकता है, हमें संसार की सच्चाई जान करके ऐसे जीना चाहिए कि वास्तव में हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। सब जानते हैं संसार की सच्चाई, लेकिन ऐसे जीते हैं जैसे कि नहीं जानते। कौन नहीं जानता संसार की सच्चाई, लेकिन दूसरे को ऐसा समझाएंगे, दूसरे के अगर विपरीत परिस्थितियां चल रही होंगी तो उसको ऐसा समझाएंगे कछु नहीं भी तो निकर्जे हैं सब, कौन तुम्हारी रेते पहली बार मरो है कोई, सबके मरा थे। और फिर जब अपने ऊपर बीतेगी तो फिर ढेर सारे आंसू बहाएंगे और रोएंगे, और दूसरे की सांत्वना अपेक्षा रखेंगे कि दूसरा हमारे ऐसी विपत्ति में सांत्वना देवे। अरे भाई ऐसा व्यवहार करते करते तो अनादि काल से अपन चले आ रहे हैं। अपने को स्वयं अपने मन में इस तरह का विचार करना चाहिए सामायिक के समय कि हाँ अगर जन्म मरण और बुढ़ापा संसार की सच्चाई है तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि जन्म मरण और बुढ़ापे से मुक्त हो सकूं, और मेरे अपने व्यवहार को मैं देखूं, जो मैं रोज करता हूं सुबह से शाम तक, मैं सामायिक में उसका एनालाइसिस करूं कि मेरा व्यवहार सही है कि नहीं है। मेरा व्यवहार कई जगह बड़ा असंतुलित है, मैं अपने व्यवहार में जो चीजें अपेक्षा रखता हूं दूसरों से वो स्वयं नहीं प्रकट कर पाता हूं, दूसरे से अपेक्षा रखता हूं कि विनयपूर्वक वो व्यवहार करे और मैं उसके साथ स्वयं विनयपूर्वक व्यवहार नहीं करता हूं। मैं दूसरे से अपेक्षा रखता हूं कि वो मेरी गलतियों के लिए क्षमा करे, लेकिन मैं जरा सी गलती देख करके और दूसरे पर बरस पड़ता हूं। अरे मुझे अभी दूसरे को नहीं सुधारना, अपने आप को सुधारना, अपने व्यवहार को संभालना है। मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई निर्मल, जिससे मुझे अपने दोष जो व्यवहार के हैं वो स्वयं महसूस होने लगे, क्योंकि मुझे आत्मा का स्वरूप विदरागता है, यह स्पष्ट दृष्टि की निर्मलता से प्रतिभाषित हो गया अंदर। अब मैं अपना व्यवहार कैसा करूं, अपने स्वभाव के अनुरूप है कि विभाव के अनुरूप? मैं अपने वितराग स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करूं, मैं उन गुणों को अधिक महत्व दूं जिन गुणों से आत्मा समन्वित है, या कि मैं दोषों को महत्व दूं? मेरे अपने जीवन के लिए, दूसरे के नहीं। मेरे जीवन में क्या दोष हैं, मेरी क्या बुराइयां हैं, मेरे राग द्वेष परिणाम कैसे कम होंगे मेरे व्यवहार में, ये मैं स्वयं विचार करूं। जान तो लिया मैंने कि मेरा स्वभाव वितराग है, लेकिन उस वितराग स्वभाव के लिए प्राप्त करने का मुझे व्यवहार भी तो करना पड़ेगा। अपन सामान्य रूप से एक कहावत है अंग्रेजी में कि टिट फॉर टैट, जो जैसा करे उसको वैसा ही। तो भैया, गधा अगर लात मारे तो अपन का करे, तो ओखों भी मारत लात। हाँ भैया, तो अपन वो गधा में कहां अंतर रहो जी? तो पशु जगत की बात है कि वो सठम सठे समाचरित, ऐसा ही कुछ है नहीं, सठे सठम समाचरित, साठ्यम या सठम, साठ्यम समाचरित, जो व्यक्ति जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो। मूर्ख आदमी के साथ तुम भी मूर्खता का व्यवहार करो, वो तो मूर्ख है ही भैया, तुम काय को मूर्ख बने हो? तुम तो अपने आप को समझदार समझते हो और व्यवहार तो ऐसा कर रहे हो जो कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। ऐसा अपने भीतर सामायिक में विचार करें कि आज मेरे व्यवहार में कहां कहां गड़बड़ी हो गई, कहां मैंने कैसा व्यवहार जैसा नहीं करना था वैसा कर लिया, मैं तो पशु जगत में उतर गया। ये तो पशु का व्यवहार है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो। नहीं, मैं अपने विवेक के अनुसार जैसा मेरे कल्याण में निमित्त है वैसा व्यवहार करूंगा। दूसरे को कुएं में गिरते देख करके मैं भी कुएं में गिरूं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं तो विवेक पूर्वक कुएं में गिरने से बचने का ही व्यवहार करूंगा। इस तरह का अपना व्यवहार सामायिक में विचार करके अपन अगले दिन के लिए, एक दिन विचार करके, अब अगला दिन जब आएगा तो मैं ऐसा विचार करके और अपने व्यवहार को सुधारूंगा, ऐसा अपन संकल्प करें। राष्ट्रपति थे लिंकन, सो रास्ते से चले जा रहे थे, एक भिखारी छोटा सा आदमी, उसने राष्ट्रपति को बड़ा जान करके उन्हें हैट उतार करके जैसे प्रणाम किया जाता है सो प्रणाम किया। राष्ट्रपति ने भी अपना हैट उतार करके उसे प्रणाम कर दिया। जितने जन साथ में थे हैं, तो वो सब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, बड़े व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता झुकने में, लेकिन जो पीछे रहते हैं उनको हम आई कर रह गई, फिर हम तो इनके संगे लगी थी बताओ, और जे ही झुक गए उनके सामने। तो सबने समझाया राष्ट्रपति जी को कि आप राष्ट्रपति हो, ऐसे जोन चाय के सामने सिर ने झुका, उन्हें हेट उतारो, आप बड़े हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुझे बड़ा मानते हो तो बड़ा व्यक्ति तो विनयवान होगा? कहले हां बिल्कुल। तो जब सामने वाला इतना विनयवान है तो उससे मैं कमती तो नहीं होऊंगा विनयवान, उससे ज्यादा विनयवान होऊंगा। तो जब कोई मुझे प्रणाम के लिए अपना माथा झुका रहा है तो मैं उससे कमती विनय थोड़ी रखूंगा, मैं भी विनय पूर्वक उसके लिए माथा झुकाऊंगा। ऐसा मैंने क्या अपराध कर लिया जो तुम सब लोग मुझे समझा रहे हो कि आपने ठीक व्यवहार नहीं किया? भाई, हम अपने व्यवहार को कई बार अपने स्टेटस की वजह से कि मैं बड़ा हूं भूल जाते हैं और अहंकारवश अपने व्यवहार को और सामने वाले व्यक्ति के प्रति कठोर बना लेते हैं। नहीं, हमारा स्वभाव तो मृदुता है, विनम्रता है। हमें वो निरंतर अपने जीवन में विचार करना चाहिए सामायिक के समय पर कि नहीं, अभी मेरे भीतर और थोड़ा बाकी है कठोरपना। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक समझ लो कि कषाय अभी गई नहीं है। माया कषाय है जो कि मेरे भीतर जटिलता लाती है। ये जटिलता तो ठीक नहीं है, सरलता ठीक है। ऐसा विचार करके अपन और अपने व्यवहार को संभालें। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि मेरी मृदुता बहुत गई रगड़ी मसली है, नहीं हुई कठोर लगता है असली है। मृदुता का व्यवहार करने पर दूसरे के द्वारा बहुत से कमेंट्स होंगे, धक्का दिया जाएगा। इसके बावजूद भी मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा, ठीक वैसे ही जैसे कि एक बाबा जी नदी में स्नान कर रहे थे, सो एक बिच्छू को नदी के पानी में डूबते देख करके उसे बचाने का प्रयत्न किया, सो जैसे ही वो बचा करके प्रयत्न में उसको किनारे पर रखते वो बिच्छू डंक मार दे, सो डंक मारता सो उनका हाथ हिल जाता, सो फिर वो नीचे उस पानी में गिर जाता। उनने ऐसा 100 दफे किया उसको बचाने का प्रयास। एक व्यक्ति देख रहा था, कहने लगे हैं तो बाबा जी मन बुद्धू हैं, जब जान रहे हैं कि वो व्यक्ति डंक मारता है तो काय को उसको बचा रहे। तो बाबा जी से कहा कि देखो बिच्छू तो आपको डंक मार रहा है और आपको उसको बचा रहे हो, काय को उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो। बोले जब वो अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मैं अपने बचाने के स्वभाव को कैसे छोड़ू, ये मेरा गुण है, मैं अपने गुण को कैसे छोड़ू। ऐसा विचार अपने भीतर व्यवहार को सुधारने के लिए होना चाहिए, तब अपन सामायिक का लाभ लेकर के अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसी भावना के साथ कि अपन सामायिक में अच्छे विचार करके अपने व्यवहार को और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ,
हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरो तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़िया,
भव वंदन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलिया,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधिया,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
के शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई
धवल म प्रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज महम जय।
ओम रेम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिंद्र संगस्त अत्र संगस्त मुनि क्षमा सागर जी मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्य निरूपामे ते स्वाहा।
मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो मानु शिव कानी है
छह द्रव्य जान वेखो बंदे।